अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गामती के साथ और मैं हूं निदा समी। आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगु करने जा रहे हैं बाबाए कौम कायद आजम मोहम्मद अली जना के हवाले से, जो कि यकीनन एक अजीम कायद थे। और ये हमारी बदकस्मती है कि उनके बाद उन जैसा एक जहीन होनहार मुनज़्ज़म शख्स, एक खरा सच्चा और पुरखलूस शख्स जो है, हमें दोबारा एक ऐसा लीडर मैसर नहीं आ सका। और यही हमारी बदकस्मती है कि वो पाकिस्तान को जिस डगर पे, जिस मंजिल की जानब जाता हुआ देखना चाहते थे, वो आज हम उससे बहुत दूर नजर आते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे बहुत मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब हसन महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
और गुफ्तगू में हमारे साथ आज शरीक हो रहे हैं फराज मीनाई साहब। फराज साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। एक मशहूर बरतानवी सियासतदान है सर जॉन बेग्स डेविसन, उनका कहना है कि अगर गांधी ना होते तो भी हिंदुस्तान आजाद हो जाता, और अगर लेनिन और माओ ना होते तो भी इंकलाब आ जाता, लेकिन अगर कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह ना होते तो पाकिस्तान नहीं बन सकता था 1947 में। आप इस बात से इतफाक करते हैं?
मेरा दिल की बात 100% दुरुस्त। देखिए, किसी लीडर का जो किरदार, उसकी सीरत, उसका काम करने का तरीका है, ये कौमों की तमीर में गैर मामूली किरदार अदा करता है। हमारी कौम, आप जानती हैं कि एक हजूम की सियासियत रखती है, इसकी कोई बहुत अच्छी तरबियत नहीं हुई है। एक लंबे अरसे तक ये क्यादत के मामले में भी यकसू नहीं थी। अगर आप कायद आज़म से पहले के ज़माने को देखें तो क्यादत कुछ मजहबी रहनुमाओं में बटी हुई थी, कुछ सियासी रहनुमाओं में बटी हुई थी। वो जो एक यकसुई होती है कि कौम एक क्यादत के तहत इकट्ठी हो जाए, ये चीज़ मौजूद नहीं थी उससे पहले। एक हजूम ये तो कर सकता है कि इंतशार पैदा कर दे, इख्तलाल पैदा कर दे, अनारकी पैदा कर दे, लेकिन वो बड़े मकासद को हासिल नहीं कर सकता। तो कायदे आज़म का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो ये है कि उन्होंने ये यकसुई पैदा कर दी, यानी मुसलमानों की जो असबियत थी वैसियत एक कौम के, वो एक क्यादत के नीचे इकट्ठी हो गई। और ये इतनी बड़ी ताकत होती है कि इस ताकत का फिर मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं होता। अगर इसके सिवा कोई और लीडरशिप होती तो मुमकिन है कि वो किसी मरहले पर कम्प्रोमाइज़ कर लेती। वो अपने उसूलों पर कम्प्रोमाइज़ करने वाले आदमी नहीं थे। आप जिस चीज़ को उन्होंने उसूल करार दे दिया उस पर उनसे बहस कर सकते हैं, इख्तलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो जब तक आप इस्तदलाल से या आर्गूमेंट से उनकी गलती वाजे नहीं कर देंगे, वो बिल्कुल चट्टान की तरह उसके ऊपर जमे हुए होते थे। जो अखलाकी किरदार था उनका, यानी किसी उनके बदतरीन दुश्मन ने कभी उन पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि उन्होंने झूठ बोला हो, उन्होंने किसी को धोखा दिया हो, उन्होंने कोई फरेब दिया हो, कोई ऐसी बात कही हो कि जिस बात का उनके पास सबूत मौजूद ना हो।
उनके किरदार पे
वो ज़ुबान से लफ्ज़ निकालते थे तो वो मालूम होता था कि बिल्कुल एक तीर तराजू हो गया। ये जो शख्सियत का कमाल है, असल में इसने सहर तारी कर दिया लोगों के ऊपर। और ये देखिए कि इतना लंबा अरसा हो गया है, वो सहर ख़त्म नहीं हो रहा। इससे खुद ये मालूम होता है कि कैलिबर और कैरेक्टर, ये दोनों मिल के किसी लीडरशिप को उस मुकाम तक पहुँचाती
है। कायदे आज़म के जो कंटेम्प्रेरीज थे वो भी बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सियासतदान थे। किसी भी माशरे में कायदे आज़म जैसे बड़े लीडर किस तरह पैदा होता है?
देखिए, बात यह है कि मेरा तो नुक्ता नज़र यह है कि हर कौम के अंदर अल्लाह ताला उसी तरह तवाज़ुन से बड़े लोग पैदा करता है जिस तरीके से वो औरतों और मर्दों के तवाज़ुन को कायम रखता है। कभी आपने ये देखा कि ये बहुत गैर मतवाज़न हो गया हो मामला, यानी हम कभी कभी गैर मतवाज़न कर देते हैं जंगें लड़के और इस तरह करके, वरना आप देखिए कि वो जो 51-52% का तनासुब है उसको अल्लाह ताला कायम रखते हैं। इसी तरह जो अफराद की तकसीम है वो भी ऐसे ही करते हैं, यानी आला दर्जे के शायर, आला दर्जे के अदीब, आला दर्जे के दानश्वर, आला दर्जे के मुफक्किर, इसी तरह बड़े सियासी लीडर, ये सब वो पैदा करते हैं। असल चीज़ यह है कि क्या उनको आगे आने का चैनल सोसाइटी में मौजूद है? अगर वो मौजूद नहीं है तो वो पीछे पड़े हुए दुनिया से रुखसत हो जाएंगे।
और ये चैनल किस तरह मिलता है?
ये चैनल उस वक्त खुद अंग्रेज़ों ने यहाँ फराहम कर दिया था। अगर आप ये देखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान को उस जगह ला रहे थे जहाँ पर हिंदुस्तान की अपनी क्यादत मामलात को संभाल सके, और उनकी अपनी रवायात बहुत मुस्तकम थी। यानी आज भी दुनिया में अगर जमहूरी रवायात की आप मिसाल देना चाहें, पार्लियामेंट को कैसे काम करना चाहिए, वज़ीर आज़म को कैसे काम करना चाहिए, बाहमी तौर पर लीडरों में क्या रवाबित होने चाहिए, तो उसकी एक बड़ी गैर मामूली ट्रेडिशन पीछे मौजूद थी। ये जो हमारी उस ज़माने में लीडरशिप पैदा हुई उसके सामने मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ों का निज़ाम था जो वो बरतानिया में चला रहे थे। ये लोग वहाँ गए, ये वहाँ पढ़े, इन्होंने उनकी ज़ुबान सीखी, इन्होंने उनकी रवायात का मुताला किया, तो एक लिहाज से वो ज़हनी पस मंज़र वहाँ से ले के आए। उसके साथ उनकी अपनी शख्सियत थी, ये दोनों चीज़ें थी। चैनल किस चीज़ ने फराहम किया? चैनल इस चीज़ ने फराहम किया कि उस आज़ादी की जद्दोजहद थी। तो आज़ादी की जद्दोजहद में आपको रुपया नहीं चाहिए होता था लगाने के लिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतना है। मौजूदा सियासत तो ये है ना कि अगर मेरे पास कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है और मेरे पास कोई 2-4 करोड़ रुपया नहीं है कि मैं उसमें लगा के जीत सकूं, तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं सियासत कर सकूं। उस वक्त सियासत नाम था इसका कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, आप कितनी अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं, तो आप बेसरो सामान भी हैं, तो आपके पास चैनल मौजूद था। यानी देखिए ना, बात यह है कि आदमी खुदा के पास से क्या लेके आता है, सलाहियत ले आएगा, गुफ्तगू का उसलूब ले आएगा, तालीम पालेगा आला से आला, ये सारे काम तो आदमी कर सकता है, रुपया नहीं पैदा कर सकता आसानी के साथ। तो जब आप क्यादत और लीडरशिप के लिए ये शर्त बना देंगे कि उसमें करोड़ों रुपए भी आपको खर्च करने पड़ेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कायदे आज़म के ज़माने में खा वो गांधी हो, खा वो नेहरू हो, खा वो पटेल हो, खा वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, खा वो खुद कायदे आज़म हो, कायदे आज़म बाद में बहुत अमीर कबीर हुए अपने ज़ाती उनका, लेकिन बहरहाल उस वक्त एक मतवसत तबके के आदमी के लिए भी अगले दिन वो फैसला अगर करे कि उसको कोई किरदार अदा करना है कौम मुल्क में, तो चैनल मौजूद थे।
अभी भी इतने कोई 68 साल के बाद भी तकरीबन हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि कायदे आज़म का विज़न क्या था और उसके हवाले से हम किस किस तरफ चले गए हैं। तो जब सारी चीज़ें हमारे सामने हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में और उनकी तकारीर की शक्ल में सब कलमबंद हुई हुई हैं, तो हम क्यों नहीं उस तरफ जा पा रहे हैं जो कायदे आज़म ने?
हम ये नहीं फैसला कर पाए कि मुल्क उन्होंने मुसलमानों के लिए बनाया था या इस्लाम के नाम पर बनाया था जहाँ किसी और को रहने की इजाज़त ना हो।
हम असल में ये फैसला करना नहीं चाहते। देखिए बात यह है कि हमारे अपने तासुबात हैं। यहाँ दो तबकात हैं। एक तबका वो है कि जो मजहबी पस मंज़र रखता है, बुनियादी तौर पर मजहबी पस मंज़र का ज़हनी प्रॉब्लम समझ,
शुरू में पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ भी थे,
मुखालिफ भी थे और उसका एक ज़हनी पस मंज़र आप समझ लीजिए। देखिए मजहबी तबके का मामला ये है कि एक लंबे अरसे तक, कमो बेश 1000-1200 साल तक हमारा मजहबी तबके से मतलब उलमा बन जाते हैं, जुडिशरी इनके पास रही है। यानी जिस वक्त काजी अबू यूसुफ का तकर्रुर किया गया अब्बासी सल्तनत में, तो उसके बाद से जुडिशरी सारी अदालत का जितना नज़म था ये उलमा के पास रहा है। इससे एक ताकत हासिल होती है। आप जानते हैं कि जो एस्टेट के बुनियादी ऑर्गन्स हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा जुडिशरी का है, तो जुडिशरी जब उनके पास रही तो एक ताकत वो अपने अंदर महसूस करते। पाकिस्तान बना तो उन्हें महसूस हुआ कि हमारी ये ताकत हमें वापस मिल जाएगी। उसके लिए इस्लामी निज़ाम और इस्लाम और रियासत को कलमा पढ़ना चाहिए और करारदाद मकासद और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हमारे यहाँ ज़ेर बहस आई। अब प्रॉब्लम यह था कि कायदे आज़म को जो हैसियत हासिल थी उसको सामने रख कर कोई आदमी भी इससे बेनियाज नहीं हो सकता था कि मुझे बताएं कायदे आज़म भी यही चाहते थे। अच्छा, कायदे आज़म भी यही चाहते थे, इसका कोई वाज़े बयान तो मिलता नहीं था। तो जहाँ जहाँ उन्होंने इस्लाम का नाम लिया था या उन्होंने किसी मौके पर इस ताबीर करते हुए शरीयत का जिक्र किया था, उसको लोगों ने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मुकाबले में क्या तबका मौजूद था जो बुनियादी तौर पर सेकुलर मिजाज रखता था, वो रियासत और मज़हब अलग अलग रखना चाहता था। तो उन्होंने ये किया, कायदे आज़म की जो 11 सितंबर की तकरीर है, 11 अगस्त की तकरीर है, जिस तकरीर में उन्होंने पहली मरतबा लोगों को ये बताया कि यहाँ पर कोई तासुब नहीं होगा, आप आज़ाद हैं, आप अपने मज़हब पर जिस तरह चाहते हैं अमल करें, आप चर्च में जाएँ, आप मस्जिद में जाएँ, हम पोलिटिकली आपको मज़हब किसी का पाबंद नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने इसको अपने लिए माखज़ बना लिया। अब एक कश्मकश हमारे मुल्क में शुरू हुई, जबकि आप इससे बेनियाज होके कि आप क्या चाहते हैं, आप ये समझने की कोशिश करें अगर कि कायदे आज़म क्या चाहते हैं, फिर कोई मुश्किल नहीं होगी।
गांधी साहब, यहाँ तक बात आ गई है तो इस तकरीर पे भी हम बात करेंगे और दूसरा ये भी पूछेंगे कि बदकिस्मती से कायदे आज़म को तो ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी इतनी कि वो रहते और पाकिस्तान को उस डगर पे डालते जो कि उनका विजन था, लेकिन उनके साथ जो उनकी जद्दोजहद में उनके साथी शरीक थे वो भी इसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए, इस पर हम बात करेंगे एक मुख्तसर से वक्त के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से आज हम गांधी साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। गांधी साहब, कायदे आज़म के इंतकाल के बाद जो कि फौरन ही पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद हो गया, बदकिस्मती से लीडरशिप का फुकदान क्यों नज़र आया?
देखिए उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग ने बहुत ताखीर से इसको एक नस्बलाइन के तौर पर अपनाया था। यानी पहले मरहले में कायदे आज़म बर्रे सगीर ही की आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे थे। इस तरह का कोई मनसूबा इब्तदा में पेश नज़र नहीं था कि ये एक आज़ाद मुल्क बन जाएगा। ये आपको मालूम है कि एक लंबे अरसे तक उन्होंने 14 निकात पेश किए, बहुत सी कॉन्फ्रेंसें हुई जिसमें मौजू ज़ेर बहस किया था। मौजू ज़ेर बहस ये था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा है, تو اس کے اندر مسلمانوں کے حقوق کیا ہوں گے یا دوسری اقلیتوں کے حقوق کیا ہوں گے
پہلے سے طے کر
لیا یا اسی طرح جن جن علاقوں میں اکثریت ہے وہاں اگر کوئی صوبے بنیں گے یا ریاستیں آزاد ہوں گی ان کے معاملات کس طرح ہوں گے، یعنی ہندوستان کے اندر مسئلے کو طے کیا جا رہا تھا۔ اگر ہندوستان کے اندر آپ مسئلے کو رکھ کے دیکھیں تو اس کے لیے تو یہ ضرورت نہیں تھی کہ آپ ایک نئی مملکت کو چلانے والے لوگ تیار کریں۔ یہ بتدریج ہوا کہ ہندوستان کی جو ہندو لیڈرشپ تھی یا کانگریس کی لیڈرشپ آپ کہیں، اس میں مسلمان بھی تھے، اس کا کچھ متعصبانہ رویہ سامنے آتا چلا گیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس صورتحال کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ کس طریقے سے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، ان کا رویہ ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ متکبرانہ سا ہو گیا۔ اس کا آخری ظہور اس وقت ہوا جب قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو قبول کر لیا۔ ان کا وہ ہندوستان کے اندر تھا، یعنی ہندوستان کے اندر ایک طرح کی صوبائی خود مختاری کا نظام تھا، اس ظاہر ہے اس کی تفصیلات اس وقت ہم زیر بحث نہیں لا سکتے، اس کو قبول کر لیا انہوں نے۔ جب قبول کر لیا دیکھیں وہ ختم کہاں سے ہوا، وہ ختم یہاں سے ہوا کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک موقع پر یہ بیان دے دیا کہ یہ ٹھیک ہے اس وقت یہ معاہدہ ہو جائے گا لیکن بعد میں تو ہندوستان کی پارلیمنٹ ہی کو طے کرنا ہے کہ اصل میں کیا ہے۔ تو قائد اعظم نے یہ محسوس کیا کہ اچھا آج ہم کوئی معاہدہ کر بھی لیں گے
تو
کل وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ موقع ہے جس کے بعد پھر پاکستان کے بارے میں بالکل یکسوئی ہو گئی۔ اب کوئی تیاری تھی نہیں، یعنی نہ اس طریقے سے مسلم لیگ کی تنظیم ہوئی تھی، نہ اس کی لیڈرشپ اس طریقے سے تھی وقتی طور پر، اور یہ جو علاقے ہیں ان میں پاکستان بنا ہے ان کے اندر پہلے سے جو لیڈرشپ موجود تھی وہ کوئی بڑے کیلیبر کی لیڈرشپ نہیں تھی۔ ہندوستان کے اندر یہ سیاسی لحاظ سے پسماندہ علاقے تھے، ان کے ہی لوگ جو تھے ان کے ساتھ معاملہ بھی کرنا پڑا۔ تو اس طرح کے کچھ اقدامات تھے جس کے لیے یہ ضروری تھا کہ قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ اگر مزید مہلت دیتے تو وہ پارٹی کی بھی تنظیم کرتے، وہ سوسائٹی کے اندر کے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو بھی اوپر لاتے۔ قائد اعظم جس طرح کی جماعت چاہیے ایک ملک کو چلانے کے لیے وہ نہیں بنا سکے تھے ابھی، یعنی اس کے وجوہ ہیں، اس کے اسباب ہیں، اس میں آپ دوش بھی رکھ سکتے ہیں کسی کے اوپر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ ہوا اس طریقے سے کہ اس کے بعد ممکن نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ کی لیڈرشپ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ معاملات کو چلا سکے تو پھر موجود جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ قبضہ کر لیتی ہیں۔ سب سے پہلے بیوروکریسی نے شب خون مارا، آپ دیکھیے یہ غلام محمد، یہ چودھری محمد علی، یہ بیوروکریسی کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو لانا پڑا تاکہ اسٹیٹ کا نظام چلایا جا سکے۔ تو پہلے مرحلے میں بیوروکریسی نے ایک نوعیت کا کو کیا۔
تو یہی وجہ ہم کہہ سکتے ہیں غاندھی صاحب کے پاکستان کی تعمیر جس طرح قائد اعظم چاہتے تھے ان کے ویژن کے مطابق نہیں ہو سکی۔
قائد اعظم کو اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ دیکھیے قائد اعظم اپنا ویژن کہاں بیان کرتے، ایک تقریر ہے یا دو تقریریں ہیں، ایک آپ کو اسٹیٹ بینک کی تقریر ملے گی، ایک یہ تقریر ملے گی، اس طرح کی چند تقریریں ہیں جن میں ابھی وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک لیڈر کو پہلے ہی مرحلے میں ڈکٹیٹ تو نہیں کرنا تھا نا، ایک نظام موجود تھا، اس نظام کے اندر ایک دستور ساز اسمبلی بنتی، اس میں پاکستان کا آئین بنتا، پھر اس کے مقاصد اس طرح کی چیزیں طے ہوتی۔ اب وہ جو کشمکش سوسائٹی کے اندر پہلے سے موجود تھی مذہبی طبقے کی اور سیکولر طبقے کی، اصل میں پھر پاکستان اس کا آماجگاہ بن گیا۔ یعنی پھر اسی کے دنگل ہیں جن کو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں، وہ آپ میڈیا پہ دیکھ لیں یہاں بھی آپ کو وہی نظر آئے گا، وہ آپ سیاست میں دیکھ لیں وہاں بھی وہی نظر آئے گا۔ تو قائد اعظم کے بعد جو ان کی دی ہوئی لائن تھی وہ کیا تھی، وہ بڑی سادہ چیز تھی، وہ یہ کہ ہم ایک ڈیموکریٹک پاکستان بنا رہے ہیں۔ دیکھیے نہ انہوں نے کبھی اسلامک اسٹیٹ کا لفظ استعمال کیا، نہ کبھی انہوں نے سیکولر اسٹیٹ کا لفظ استعمال کیا، دونوں الفاظ کبھی ان کی زبان سے نہیں نکلے۔ انہوں نے ایک ڈیموکریٹک پاکستان بنانا چاہا۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس ڈیموکریٹک پاکستان میں کیا شریعت کا قانون ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب مسلمان ہیں کیوں نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی اکثریت مسلمانوں کی ہے تو مسلمان اپنے رسوم، اپنے رواج، اپنے قانون، اپنے مذہبی کا ظہور کریں گے نا، دنیا بھر میں ایسا ہی ہوگا۔ امریکہ میں اگر ڈیموکریسی آئے گی تو امریکی قوم جن چیزوں کو مانتی ہے انہی چیزوں پر سب چیزیں وجود میں آئیں گی۔ تو قائد اعظم کا بڑا سادہ تصور تھا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو ایک جمہوری معاشرہ پیدا کرنا ہے جس کے اندر جمہوری کلچر ہو، لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں، ڈائیلاگ کریں، آزادی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں، اس کے اندر مذہبی تعصبات نہ ہوں، اس کے اندر سیاسی تعصبات نہ ہوں، ان سب چیزوں سے بالکل بلند ہو کے ہم ایک ایسا معاشرہ پیدا کریں جو جمہوری معاشرہ ہو۔ جمہوری معاشرے کے اندر نظام کیا ہوگا، یہ اصل میں لوگوں سے پیدا ہوتا ہے، اور قائد اعظم یہی چاہتے تھے کہ لوگوں سے پیدا وہ ہم نے پیدا نہیں
کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ نتھی نہ ہو، کیونکہ بار بار ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر آیا تھا 11 اگست والی اسپیچ کا، تو آج تک ہمارے معاشرے میں بحث چل رہی ہے، کچھ کہتا ہے کہ وہ اسپیچ ان کی غائب کرا دی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ریلیجن ذاتی معاملہ ہے، اینڈ یو فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز اینڈ ماسک اینڈ چرچز، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں وہ ایک، آپ نے بھی جیسے کہ ابھی ذکر کیا کہ وہ لوگوں سے بات، لوگوں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا شرعی معاشرہ ہو سکتا ہے،
ساری باتیں انہوں نے دیکھیے ان کا کہنا یہ تھا۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ کو کلمہ پڑھانا شروع کر دیں جیسے ہمارے یہاں ہوا، آپ طے کرنا شروع کر دیں کہ یہ ملک کیا ہوگا، नहीं, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने देना, यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जब चलेगा तो आपकी पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है।
उन्होंने कभी इस्लामी जमहूरिया का लफ्ज इस्तेमाल
इस तरह के अल्फाज कभी इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं। देखिए, कोई रियासत कभी कलमा नहीं पढ़ती, किसी रियासत का कोई मजहब नहीं होता, मजहब उसके अवाम का होता है, मजहब उस उनके अवाम का होता है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, आप एक पाकिस्तानी हैं, क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे कुछ सोचने के अंदाज मुख्तलिफ हैं, हमारे रसूम रवाज हैं, हमारा एक कल्चर है, हमारी सकाफत की बात कदरें हैं जिनको हम बड़ी अहमियत देते हैं, इसी तरीके से हमारा मज़हब भी है। ये सारी चीज़ें मेरे वजूद का हिस्सा हैं और पाकिस्तान में इन्हीं पस मंज़र रखने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट में बैठे हों और वहाँ कानून साजी हो रही है और उसमें आप में से हर एक को ये मालूम हो कि अल्लाह ताला का भी कोई हुक्म है और आप उसको नज़रअंदाज कर दें? ये नहीं होगा। तो एक एक कानून साजी में फितरी तौर पर मज़हब का ज़हूर, इससे किसी को भी इनकार नहीं होता। और एक ये है कि आप स्टेट की सतह के ऊपर मज़हब को एक सियासी ताकत बनाने की कोशिश करें, ये जो दूसरा अमल है हमने पाकिस्तान में वो किया, कायदे आज़म यही चाहते हैं।
गांधी साहब 70 साल होने को आ रहे हैं पाकिस्तान को बने हुए, आज तक बहस इस्लामी जमहूरी और जमहूरिया पे चल रही है और फिर हम बार बार कहते हैं कि हम मंजिल से बहुत दूर हैं, हम कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं बना सके, और बार बार ये हमारे हुक्मरान और सियासतदान ये दावा करते हैं कि हम कायदे आज़म का पाकिस्तान इसको बनाना चाहते हैं, तो जब कायदे आज़म के विजन का ही आज तक तायुन नहीं हो सका है तो हम किस तरह से कायदे आज़म का पाकिस्तान बना सकते हैं?
ये चंद लम्हों में हो जाएगा, यानी इसके करने के लिए मैंने वही अर्ज़ किया कि हम अपने तासुबात से बालातार हो जाए। यानी किसी भी चीज़ को आप कुरान मजीद को देखिए, अल्लाह की किताब है, खुदा के आखिरी रसूल ने उसको पेश किया है, खुदा के अपने अल्फाज में हमारे पास मौजूद है। आप कुरान मजीद के पास जाएँ ये जानने के लिए कि वो क्या कहता है, तो वो अपनी बात बड़ी वजाहत से बयान करता है। लेकिन अगर आप अपना कोई तासुब, अपना नज़रिया, अपना फ़िरका लेके चले जाए और उसके दलाइल तलाश करें तो फिर गुमराही गुमराही
अपनी मतलब की
तो
बात
होता। असल में ये है कि हम ये जानना चाहते नहीं कि कायदे आज़म क्या कहते हैं। कायदे आज़म ये चाहते थे कि मुसलमानों के माशी हालात बेहतर हों, मुसलमानों को पस्ती से निकाला जाए, मुसलमानों को एक कौम की तरह तामीर किया जाए, मुसलमानों के अंदर डेमोक्रेटिक रवायात पैदा हों, मुसलमान उस अमल में शरीक हों जो जदीद माशरे ने पैदा कर दिया है। ये कायदे आज़म चाहते थे, ये हमारा अहम मकसद ही नहीं है।
हम चाहते हैं कि हम अपनी बात कायदे आज़म के मुंह
में डालें। जिस वक्त उनसे बात की जाती थी कि शरीयत, मज़हब, इन चीज़ों के बारे में, वो इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं थे। वो ये कहते थे कि इसका ज़हूर असल में लोगों की राय से होना चाहिए और ये पार्लियामेंट में हो जाए।
गांधी साहब, इससे अब ये नहीं महसूस होता, यही जैसे हम बात करें कि हम अपनी बात कायदे आज़म के मुंह में डलवाना चाह रहे हैं, हम आज इस बात पे अफसोस तो करते हैं कि हम कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं बना सके, पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी है, मगर हम इस पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं है कि हम कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं बना सके, क्योंकि अभी भी हम इसी बात पर मुसर हैं कि हम जो चाहते हैं वैसा ही पाकिस्तानी हो।
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हम जो चाहते हैं, मैं भी अगर आप ये कहें ना कि कौम जो चाहती है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, वो फिर कायदे आज़म का पाकिस्तान होगा।
अपने
हमारे अपने तासुबात क्या है, हमारा सोचने का अंदाज क्या है, और उसमें भी अगर हम उसको डायलॉग में लाएँ, यानी एक दूसरे की बात सुने, लोगों को एजुकेट करें, फिर भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं और वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि कुव्वत के बल पर उसको ठूंस दें। यानी आप ये देखिए कि पदा में भी क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ कोई बड़ा अच्छा डिबेट हुआ हो कि हमारे यहाँ आईन किस तरीके से बनना चाहिए। उसमें मजहबी तबके ने कुछ चीज़ों को बिल्कुल आपकी गर्दन पर अंगूठा रख के मनवाया आपसे, यानी ये हुआ ना। ये जब भी होता है, अच्छा उसके बाद जो दूसरा मरहला है, वो मरहला वो है कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ने इक्तदार संभाला हुआ था और ज़ियाउल्लाह साहब मजहबी कानून साजी कर रहे थे, उसमें भी ये नहीं हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ें ज़ेर बहस आई। जब पार्लियामेंट में ये चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं तो पूरी कौम एजुकेट होती है, लोगों की आरा सामने आती हैं, बड़ा अच्छा फिक्र जो सोसाइटी के अंदर मौजूद होता है वो सामने आता है और कानून साजी का एक अमल जारी होता है। कानून साजी में हमारे मजहब ने दखल देना है हर हाल में, लेकिन वो देगा फितरी तौर पर। जब आप उसको उससे हटा के कहीं से लाने की कोशिश करेंगे तो माशरे के अंदर घुटन पैदा होगी, माशरे में आज़ादी मजरू होगी, माशरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के गिरोह आपस में मुतसादिम होंगे और फिर आप कभी आखिरी दम तक सेकुलरिज्म और इस्लाम की बहस से नहीं निकल सकेंगे।
आमदी साहब, ऐसा अभी है कि हम, क्योंकि हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि कायद अजम यकीनन एक अजीम कायद जिन्होंने हमें एक मुल्क बना के दिया, उनके साथियों के बारे में भी हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन एक ही राय भी है कि कायद अजम अपने साथियों से मायूस नजर आते थे, क्या ये दुरुस्त है? और यही मायूसी आज भी हमें सियासतदानों में,
इसमें बहुत कुछ मुबालगा भी है। मिसाल के तौर पर देखिए ना, एक बात बहुत मशहूर हो गई, कायद अजम ने कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं या मैंने और मेरे टाइप राइटर ने बनाया है। तो इस तरह की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तहकीक के मैार पर पूरी नहीं करते। यानी कायदे आज़म के अपने साथियों के साथ बहुत एतमाद के ताल्लुकात थे। मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि जिस तरह के लोग एक मुल्क को चलाने के लिए चाहिए, कांग्रेस उनको पैदा करने में कामयाब हो चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस की तो जद्दोजहद 100 साल पीछे की थी। कायदे आज़म इसमें कभी कामयाब नहीं हुए थे। यानी उनको तो यहाँ से आखिरी दर्जे में, आपको मालूम है कि बिल्कुल आखिर में आकर, यहाँ
सही
यूनिट्स पार्टी की हुकूमत थी, बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए थे 40 के इंतखाबात के बाद भी। तो इस वजह से कायदे आज़म को बड़ा थोड़ा वक्त मिला इसके लिए कि वो एक ऐसी कुव्वत तैयार कर सकें, एक पार्टी बननी चाहिए ना, यानी सियासी जमात जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है, हकीकी सियासी जमात वो अभी बनी नहीं थी। बने बगैर कायदे आज़म दुनिया से रुख्सत हो गए। बाद की लीडरशिप अगर सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पर देती है, उन्हें एक अच्छी पार्टी बनानी है, उसके अंदर उसी तरह से लीडरशिप आनी चाहिए जिस तरह के अल्लाह ताला लीडरशिप पैदा करता है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि इस वक्त बेशुमार लोग हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने 40-45 साल की पब्लिक लाइफ में देखा है, बहुत गैर मामूली सियासी सलाहियतें रखने वाले नौजवान, पॉलिटिकल सलाहियतें। मैंने पाकिस्तान की सिविल सर्विस एकेडमी में बरसों पढ़ाया है, और आपकी ब्यूरोक्रेसी में जो लोग आते हैं उनके अंदर दो चार ऐसे लोग नज़र आ जाते थे जिनमें बड़ी गैर मामूली सियासी सलाहियत है। जैसे ही वो ये ख्याल करते थे कि वो सियासत में फ़ाल हों, तो उनके सामने एक दीवार खड़ी होती थी। वो दीवार क्या है? वो दीवार वसाइल की दीवार है, क्योंकि आपने निज़ाम ऐसा बना दिया है कि इसके अंदर या जागीरदार आ सकता है क्योंकि वो फारिग बैठा हुआ होता है, या फिर कोई बड़ा सनतकार जो अपने बच्चों के सुपुर्द अपना सनती एम्पायर कर चुका हो और उसके पास अब फारिग वक्त हो। एक कॉमन मैन किस तरीके से आए, ये है असल
मसला। गांधी साहब, और भी सवाल आते हैं फराज, सॉरी मैं आपको यहाँ पर काट रही हूँ, सवाल आपको लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुश आमदीद। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से हम गुफ्तगु कर रहे हैं। फराज, आपका कोई सवाल था?
जी गम साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि आपने अभी ब्यूरोक्रेसी का हवाला दिया कि कायदे आज़म पूरी तरह तैयारी नहीं कर सके कि मुल्क को आगे कैसे चलाना है, और फिर शुरू में ब्यूरोक्रेसी ने आके वो एक गैप फिल किया। मगर हम पढ़ते हैं और सुनते रहे हैं कि कायदे आज़म ने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से खुद रिक्वेस्ट की पर्सनली कि वो हिंदुस्तान के बजाय पाकिस्तान आ जाएँ और उनकी मदद करें पाकिस्तान को आगे लेकर जाने में। तो ब्यूरोक्रेट्स भी उस वक्त काफ़ी इस चीज़ से आशना थे कि कायदे आज़म का विज़न क्या है या नहीं है, इस पर आप कुछ थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं?
देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो एक कौम या मुल्क को चलाने के लिए नागुज़ीर ज़रूरत है, यानी ये सारे इदारे ज़रूरत हैं। कायदे आज़म ये चाहते थे कि वहाँ से लोग आएँ, आखिर हमें एक फ़ौज बनानी थी, उसके बगैर मुल्क नहीं चलाया जा सकता था, ब्यूरोक्रेसी भी तामीर करनी थी। ब्यूरोक्रेसी का मिजाज असल में सियासी नहीं होता, यानी ये अलग अलग काम है। एक चीज़ ये है कि आपके सामने एक विजन आ गया, एक चीज़ आ गई, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ब्यूरोक्रेसी का बुनियादी काम ये है, यानी जो उसको सियासी लीडर, कायदे आज़म एक सियासी रहनुमा थे ना, ब्यूरोक्रेट तो नहीं थे। यानी ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी का एक फ़र्द था जिसने पाकिस्तान की तहरीक चला दी। सियासी लीडर का काम ये है कि वो लोगों की तरबियत करे, उनको मुनज़्जम करे और वो विजन दे, यानी आगे क्या करना है। ब्यूरोक्रेसी का काम ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करे। एक और तबीर हमारे यहाँ आजकल इख्तियार की जाए, नज़रियाती सरहदों का दिफा। नज़रियाती सरहदों का दिफा दानिश्वर करते हैं, यानी वो लोग करते हैं जिनको खुदा ने नज़रिए की तश्कील की सलाहियत दी होती है। ये बंदूक से नहीं होता नज़रियाती सरहदों का दिफा। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इनके बगैर स्टेट का निज़ाम नहीं चलाया जा सकता। सियासतदान लाजमन होने चाहिए, यानी ये ऐसा फ़न है, इल्म है, कि जिसमें बहरहाल सियासतदान ही कामयाब होते हैं। तो सियासतदान किस दर्जे के थे हमारे यहाँ? हिंदुस्तान में जो कांग्रेस के सियासतदान थे वो एक लंबी तरबियत पा चुके थे, उनको मालूम था कि उनकी कौम क्या है, उनके इशार की अपनी दास्तानें थीं। आप उनसे इख्तलाफ़ कर सकते हैं उनके नुक्ता नज़र से, लेकिन आज तक उनके यहाँ वो लीडरशिप मौजूद है, अभी भी चल रही है, अभी भी बाज़ बुड्ढे मौजूद हैं कि जो उस ज़माने के तरबियत याफ्ता है। हमने दो काम किए, एक तो ये कि जो कुछ भी कायदे आज़म का असासा था सियासी, उस सियासी असासे को बहुत जल्द हमने वैसे ही लुटा दिया, और उसके बाद बार बार एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ने लीडरशिप अपनी नर्सरी में तैयार करना शुरू कर दिया। हम जिस लीडरशिप से अब वाकिफ़ हैं वो हकीकत में एस्टेब्लिशमेंट की आगोश में परवरिश पा के आगे बढ़ी होती है। इस लीडरशिप को आप हकीकी लीडरशिप कह ही नहीं सकते। हकीकी लीडरशिप तक बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी सियासी जमातें वजूद में लाएँ जिनके अंदर मेरिट की बुनियाद पर लोग आ सकें, उसमें जद्दोजहद कर सकें। उनको इसकी ज़रूरत ना हो कि उनके पास जब तक 15 कारें नहीं हैं और 2 जहाज़ नहीं हैं उस वक्त तक वो आपके दाएं और बाएं नहीं खड़े हो सकते। एक आम कारकुन अपनी जहानत, फतानत, अपने इल्म, अपने विजन की बुनियाद पर आगे बढ़ सके। कायदे आज़म एक आम घराने में पैदा हुए थे, अल्लामा इकबाल एक आम घराने में पैदा हुए थे। अल्लामा इकबाल के वालिद टोपियाँ सीकर अपनी मईशत चलाते थे, आप अपने बड़े लीडरों के बारे में देखें वो क्या
जीनियस ऐसे घरानों
तो
में
वो पैदा होते हैं। आज भी आपके देहात तक में हमने तो असल में कई ऐसे इकदाम किए हुए हैं, बहुत बड़ा टैलेंट जो हमारे देहात में होता है वो महज हमारे यहाँ निज़ाम तालीम की ख़राबी की वजह से आगे नहीं आ पाता, इसलिए कि आपकी एक ख़ास एलीट है जो एक ख़ास तरह के स्कूलों में पढ़ती है, आपने चूँकि एक अजनबी ज़ुबान को अपने मुल्क की सरकारी ज़ुबान बना रखा है, उसी को ज़रिया तालीम बना रखा है, उसका नतीजा ये निकलता है कि आपका हकीकी टैलेंट, अभी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप एक सर्वे कीजिए और ये देखिए कि इस वक्त आपके जो नुमाया बड़े रहनुमा हैं, रहनुमा से मेरी मुराद सिर्फ सियासी रहनुमा नहीं है, यानी आपके दानिशवरों में, आपके शायरों में, आपके बड़े सहाफ़ियों में, आपके अदीबों में, आपके जलीलुल क़द्र उलमा में आप फहरिस्त बनाइए, आपको 90% से ज़्यादा लोग देहात से आए हुए मिलेंगे। वो आबाद अब शहरों में हो चुके हैं लेकिन असल में उनका पस मंज़र देहाती होगा। तो आपके यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मेरे नज़दीक लीडरशिप पैदा हो रही है, उसी दर्जे की पैदा हो रही है जैसे पहले होती थी, आपने उनके लिए चैनल्स बंद कर दिए आगे बढ़ने।
गांधी साहब, आपने एलिटिज्म का भी जिक्र किया, सर कायदे आज़म का वाक़या याद आया कि वो एक दफ़ा फाटक पे उनकी गाड़ी रुकी तो गेट बंद था क्योंकि ट्रेन गुजरनी थी, तो उनके सेक्रेटरी ने नीचे उतरकर वॉचमैन से जो चौकीदार वहाँ पे खड़ा था से कहा था कि तुम्हें पता नहीं है ये कायदे आज़म है, ये फाटक उसने डर के मारे फ़ौरन खोल दिया। तो उस पर कायदे आज़म ने कहा कि ये इसने दुरुस्त काम किया है, हम तभी गुजरेंगे जब ये ट्रेन गुजरेगी। आज अगर हम देखें तो बज़ाहिर तो हमें बड़ा शरफ की बात लगती है कि हमारे लीडरान और हुक्मरानों को शरफ हासिल है कि उनके लिए ट्रैफिक रोक दी जाती है और रुकवाए घंटों घंटों लोगों को सड़कों पर रुकवाया जाता है, लेकिन ये क्या जहनी पस्ती का सबूत नहीं है?
कोई शक नहीं इसमें, इसका मतलब ये है कि जो लीडरशिप इस वक्त है वो अपने अंदर से बड़ी नहीं है। जब आदमी अपने अंदर से बड़ा होता है तो उसको असल में इन खारजी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती।
और हम सड़कों की बात कर रहे थे, जहाज़ तक रोक दिए जाते हैं सियासतदानों के लिए।
कायदे आज़म अपने बातिन से बड़े थे, अल्लामा इकबाल अपने अंदर से बड़े थे। और आप इकबाल को देखिए, यानी वो शायर हैं, अदीब हैं, मुफक्किर हैं, सियासत में भी उन्होंने कुछ हिस्सा लिया। जो सबसे बड़ी खसूसियत आपको उनकी मिलेगी वो उनका इखलास है। यानी एक एक जगह उंगली रख के आप नहीं बता सकते कि कोई बद तहजीबी की बात उनके ज़ुबान से निकली हो। मैंने कायदे आज़म की पूरी तकरीरें और उनकी ज़िंदगी को देखा है, तीन या चार जुमले हैं जिनको आप काबिल एतराज़ कह सकते हैं कभी निकल गए ज़ुबान से, वरना आम हालात में तहजीब, शराफत, इल्म, दयानत, उसका एक मुजस्मा आपको नजर।
मतलब ये कहा जाए कि उन्होंने ये इज्जत कमाई खुद से,
इसमें कोई शक नहीं।
जबरदस्ती
तो हमारी लीडरशिप जो है वो चूंकि अपने बातिन में बहुत पस्त होती है, मसनूई तरीके से बनी होती है, खानदानी बुनियादों पर सामने आई होती है, उनके गिर्दो पेश में जो लोग हैं वही होते हैं जो कसीदे पढ़ने वाले होते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर उसको इसकी ज़रूरत होती है, यानी वो अपने तुम तराक को बयान करती है। यहाँ बेशुमार लीडर है, मैंने देखा आप तो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं कि हम सियासत में क्यों आए थे, उसका जवाब वो ये देते हैं, कायदे आज़म ने कभी ये जवाब नहीं दिया था, वो कहते हैं इज्जत कमाने के लिए आए थे। भाई सियासत जो है वो जरिए
इज्जत थी, यहाँ तो अब सियासतदान होना एक गांधी साहब एक और मजहब के हिसाब से बात करना चाहूंगी कि कायदे आज़म की पर्सनैलिटी अगर देखी जाए, उसका जायजा लें हम, तो तमाम तासुबात से बालातर नजर आते थे। यकीनन वो कोई ना कोई मुसलमानों में कोई फेथ प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन आज तक ये बहस जारी है कि गोया वो शिया थे या सुन्नी थे। उनसे एक दफ़ा सवाल भी किया गया मजमे में कि आप शिया या सुन्नी, तो उन्होंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या था, अगर वो शिया थे तो मैं शिया हूँ, सुन्नी थे तो मैं सुन्नी हूँ, मुसलमान थे महज तो मैं भी मुसलमान हूँ। उन्होंने इस बात को कभी ना, हमने लसानी तौर पे उनकी फर्स्ट लैंग्वेज अगर मदर टंग कहा जाए तो वो कुछ और थी, लेकिन हमने कभी उसका भी, आज के सियासतदान और उलमाए कराम तो हमें बांटने पे तैयार नजर आते हैं कि जी इंतजामी बुनियाद पर यूनिट्स ही बनना चाहिए, सराइकियों को एक अलग सूबा मिलना चाहिए, उर्दू बोलने वालों को एक अलग सूबा मिलना चाहिए। इसको आप किस तरीके, और फिर कायदे आज़म के विजन की भी बातें भी ये लोग करते हुए नज़र आते हैं।
जी उसकी वजह वही होती है, यानी हम असल में ये देखते हैं कि हमारा जो सियासी मकसद है उसको कहाँ तस्कीन मिलती है, तो इस वजह से ये सारी स्कीमें हम पेश करते रहते हैं। यानी अगर हमें मालूम हो कि पूरे पंजाब पर हम या पूरे सिंध पर हुकूमत कर सकते हैं तो हम कभी सूबों की तकसीम का नाम नहीं लेंगे। अगर ये मालूम हो गया ज़रा मुश्किल हो गया है तो फिर हम तकसीम की गुफ्तगू शुरू करें। यानी हमारी बात निकलती कहाँ से है? मैं ख़ुद इसका बड़ा हामी हूँ कि इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम होना चाहिए, छोटे होने चाहिए। ये दुनिया भर में हुआ है, हिंदुस्तान में रोज़ होता है, नए सूबे अभी हाल में बने हैं, ये अमल जारी रहना चाहिए। इसी तरह मुकामी हुकूमतें क्यों नहीं बनती? उसकी वजह ये है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका इकतदार उसके नतीजे में क्वेश्चन में आता है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ बेशुमार चीज़ें असल में अपने तासुबात से देखी जा रही होती हैं। कायदे आज़म ये काम नहीं करते थे, उस वक्त की लीडरशिप भी ये काम नहीं करती थी। यानी मैं ऐसे वाकयात आपको सुना सकता हूँ कि उस वक्त की लीडरशिप ने अपनी मकबूलियत को दाव पर लगा दिया, कोई परवाह नहीं की इस बात की। उनके नज़दीक कौम और मुल्क के लिए जो बात दुरुस्त थी, या उस वक्त आप कह सकते हैं कि मुसलमान कौम के वो लीडर थे, तो अपनी कौम की बहबूद को सामने रख के जिस चीज़ को दुरुस्त समझते थे पूरी कुव्वत के साथ कहते थे। علامہ اقبال کے بعد ایسے واقعات ہیں کہ حیران کن ہیں کہ انہوں نے کس طریقے، ان کا ایک زمانے میں قائد اعظم سے اختلاف ہو گیا تھا، یعنی ان کے مابین اصل میں اصول کی لڑائی ہوتی تھی یا جنگ ہوتی تھی، اور وہ بڑی شائستگی اور تہذیب کا اور ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. ظفر علی خان میں اور اقبال کے مابین دوستی ہے، تعلق ہے، مل بیٹھنا بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی ہے. اقبال نے سر کا خطاب قبول کر لیا، ظفر علی خان نظم لکھی اور نظم بھی ذمہ دار کے پہلے صفحے کو پر شائع ہو گئی، سرکار کی دہلیز پہ سر ہو گئے اقبال. تو اس طرح کی چوٹیں بھی چلتی رہتی تھیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جتھے منظم کرنے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے ہیں، یہ ان کا طریقہ نہیں.
قائد اعظم کی زندگی کا آپ نے اتنا جائزہ لیا ہو، ان کی اتنی طویل جدوجہد والی ایک پیریڈ ہے، اس میں آپ نے کبھی ان کی تقاریر میں، ان کی باتوں میں کوئی مبالغہ آرائی دیکھی؟ جیسے کہ ہم لیڈران کو اب دیکھتے ہیں کہ پہلی گولی سینے پہ میں کھاؤں گا، جس کو چلانی ہے میرے سامنے آئے، اور اس کے بعد جب واقعی میں گولیاں چلتی ہیں تو وہ لیڈران ہمیں کہیں نظر نہیں آتے، اور اس کے بعد وہ ان کے کارکنان بھی کہتے ہیں جی لیڈر اگر فرنٹ لائن پہ مارا گیا تو لیڈ کون کرے گا ہمیں؟ تو یہ تو صرف تقریر کی حد تک باتیں ہوتی ہیں، ہمیں جو عظیم ہمارے لیڈر جن کو ہم مانتے ہیں ان میں انہوں نے کبھی مبالغہ آرائی سے کام لیا؟
اور اس میں قائد اعظم کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ بھائی قائد اعظم جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں کہاں باہر نکلتے تھے، لوگ نکلتے تھے،
مگر کیا وہ یہ کہتے نظر آتے تھے کہ میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا؟ کبھی
قائد اعظم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. یہاں جو تضاد پیدا ہوتا ہے وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دوسروں کو آپ ایندھن بناتے ہیں. قائد اعظم تو اپنے سامنے مخاطبین جو تھے ان کو بھی ایک ڈسپلن جد و جہد کرانا چاہتے تھے، اور اسی کے لیے جلسوں میں جاتے تھے وہ. آخر انہوں نے بہت بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا ہے، یہ سب ہوتا تھا، لیکن ان کا اپنا جو مزاج اور انداز تھا وہ ایک ڈسپلنڈ لیڈر کا مزاج تھا. وہ خود بھی وقت کے انتہائی پابند، آپ دیکھیں وہ سیکنڈز کے حساب سے وقت کی پابندی کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا موجودہ لیڈروں کو یعنی سیکنڈز کے حساب سے؟ یہ قائد اعظم کو دیکھ کے آدمی یہ کہتا تھا کہ اب وقت ہو گیا ہے فلاں کام کا. تو وقت کی پابندی، لوگوں کی عزت اور احترام کا خیال، اپنا نقطۂ نظر صحیح طریقے سے پیش کرنا، یہ بدقسمتی ہے کہ اب جو لیڈرشپ ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہے اس کے یہاں یہ چیزیں زیر بحث ہی نہیں آتی. یہ کبھی خلوت میں بیٹھ کے اس پہ بات ہی نہیں کرتے کہ ہمیں یہ چیزیں. ان کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے سیاست میں، جو میں نے جن لوگوں کو اپنے جوانی کے زمانے میں دیکھا ہے، وہ لوگ بھی بڑے لوگ تھے. ان کا بھی انداز کیا انداز تھا، کس طریقے سے وہ بات کرتے تھے، کس شرافت اور تہذیب سے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے تھے. ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاید پڑھتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو قائد اعظم کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک آئینی اور قانونی جد و جہد کا طریقہ اختیار کیا. تو جب انہوں نے طریقہ ہی وہی اختیار کیا تو اس کے لیے انہیں بالکل اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ کہیں دھرنا دے کے بیٹھیں یا لوگوں کو خام خواہ ایکسپلائٹ کریں یا اس طریقے کی گفتگو کریں. ان کی گفتگو میں آپ کو کسی درجے میں وہ مبالغے کو گالی سمجھتے تھے، ممکن ہی نہیں ہے. یعنی ان کی تو ساری تعلیم تربیت یہی تھی قوم کو کہ صحیح اور حقیقی بات لوگوں کے سامنے بیان کرو. کسی موقع پر انہوں نے کوئی اس طرح کے دعوے نہیں کیے، بہت ہی پرسکون طریقے سے اپنی جد و جہد کو پیش کرتے تھے، لوگوں کو قائل کرتے تھے، گلی گلی گئے. قائد اعظم نے بہت دور تک دورے کیے ہیں، جا کے اجتماعات سے خطاب کیا ہے، لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا ہے. علامہ اقبال بھی ایک زمانے میں الیکشن بھی لڑا انہوں نے، اسی طرح باقی لوگوں کا. مولانا ابوالکلام آزاد، میں نے آپ سے عرض کیا کہ شرافت تہذیب، یعنی لوگوں کو بتایا مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ جیل کس شان سے کاٹی جاتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے انہیں کا واقعہ ہے کہ وہ جیل میں گئے تو سگریٹ پیتے تھے، تو انہوں نے سگریٹ کی ڈبیا جو ہے وہاں رکھ دی، اور اس کے بعد وہ جیل میں چلے گئے، کئی برس رہے، واپس آئے تو جس جگہ سے سگریٹ رکھا تھا وہیں سے آ کے اٹھا لیا، لیکن جیل میں ایک مرتبہ سگریٹ مارنے لگایا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ مجھے کسی سے درخواست نہ کرنی پڑے. ان کی بیوی کی وفات ہوئی ہے احمد نگر کی جیل میں اس زمانے میں. آپ وہ خط پڑھیے غبارِ خاطر میں کہ ایک شخص کس طرح اپنے وقار کو قائم رکھ رہا ہے، وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ بیوی کی وفات کے موقع کے اوپر یہ درخواست کرے کہ مجھے جانا ہے. مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی نے لکھا اپنے بارے میں کہ مجھے جب جیل میں ڈالا گیا تو میری ساری ٹانگوں کے اوپر داد کا حملہ ہو چکا تھا، یعنی بہت شدید تکلیف تھی. تو میں نے رات کے وقت اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار میں ان ظالموں سے دعا کی درخواست نہیں کروں گا، آپ مجھے ٹھیک کر دیں. اس درجے کے لوگ تھے.
ہم جی صاحب، ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گی، پروگرام کا وقت ختم ہے. ہم نے سیاستدانوں کے اوپر تو بات کی کہ کیوں نہیں لے جا سکے وہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق، ہم سے کہاں غلطی ہوئی؟ وہ قوم جو ایک قائد اعظم کے ایک اشارے پہ کھڑی ہو جاتی ہو اور ان کی باتیں یقین، اتحاد اور تنظیم پر زور دینے والی قوم، کیا ہوا کہ ہم بھی ان کے انتقال کے بعد سب کچھ بھول بیٹھے اور پھر وہی پرجوش تقاریر کرنے والے ایسے لیڈر جو کہ ہمیں گمراہی کی جانب لیتے چلے گئے، ملک کو بھی لیتے چلے گئے، ہم ان کے پیچھے چل پڑے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک عوام کا تعلق ہوتا ہے، وہ بہرحال اپنے خدا کا بنایا ہوا قانون اور نظام یہی ہے کہ وہ آپ سے آپ ٹھیک جگہ پر نہیں ہوتے، ان کے لیے لیڈرشپ ضروری ہوتی ہے. اور لیڈرشپ تین جگہ موجود ہوتی ہے. لیڈرشپ آپ کے سیاستدانوں میں ہوتی ہے، لیڈرشپ آپ کے علماء میں ہوتی ہے، دانشوروں میں ہوتی ہے. اصل میں آپ کے دانشور، آپ کے علماء اور آپ کے سیاستدان، ये क्या तरबियत दे रहे हैं, क्या तालीम दे रहे हैं। अब मैं महसूस करता हूँ कि ऐसा ज़माना आ गया है कि जिसमें और बहुत से ज़राए पैदा हो गए हैं जो लोगों की राय को हमवार कर सकते हैं। तो अब ये तवक्को की जा सकती है कि कौम बहसीत मजमू ख़ुद ब खुद भी एजुकेट होनी शुरू हो जाए। तो कौम का एजुकेट होना, मैं आम आदमी को अब भी यही कहूँगा कि वह अपने आप को तालीम दे, यानी उसको जानना चाहिए कि उसका मज़हब क्या है, उसको जानना चाहिए कि दुनिया की तारीख क्या है। मोटी मोटी बातें, आम आदमी हर चीज़ का स्कॉलर नहीं होता, लेकिन उसको इतना इलम ज़रूर होना चाहिए कि अहमक लोग उसको गुमराह ना कर सकें।
दुरुस्त का बहुत बहुत शुक्रिया गांधी साहब की गुफ्तगू का। फराज मिनाई साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने गांधी साहब की गुफ्तगू सुनी। कायदे आज़म को अगर हम बाबाए कौम कहते हैं, कायदे आज़म उनको तस्लीम करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को, तो मेरे ख्याल से हम सबका फ़र्ज़ है, और हम ये शिकायत भी करते हैं कि पाकिस्तान आज उनके विजन वाला पाकिस्तान नहीं है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने तासुबात से बालातर होकर कायदे आज़म को विजन को किसी सियासतदान से समझने के बजाय या किसी आलम दीन से समझने के बजाय कि वो इस्लामी रियासत चाहते थे, ऐसी रियासत चाहते थे, अगर हम खुद अपने तासुबात से बालातर होकर उनकी तकारीर का मुशाहिदा करें, ये हम पर फ़र्ज़ है मैं तो समझती हूँ, या उनके खतूत का मुताला करें, तो हम उस वाकई में उस विजन की जानेब, उस डगर की जानेब फिर आ सकते हैं कि हम पाकिस्तान फिर से उस सतह पर लेकर आएं कि जो कि वाकई में कायदे आज़म के विजन वाला पाकिस्तान था। हम सबको ये तौफीक हासिल हो। इसी नोट पर मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।